हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, या हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 404 सुनैना को इस तरह से नींद में देखकर आदित्य ने उसे जगाने की कोशिश की और उसका नाम लेकर भी बुलाया, लेकिन सुनैना की तरफ से उसे कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तो कुछ ही देर में आदित्य समझ गया कि वो सो नहीं रही है, बल्कि बेहोश हो गई है, शायद स्ट्रेस और सिरदर्द की वजह से। सुनैना को ऐसे बेहोश होते देखकर आदित्य थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते में ड्राइवर से कहा, भैया वापस हॉस्पिटल चलो, वैसे भी अभी हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं। आदित्य की बात सुनकर ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी वहां से वापस मोड़ ली और वो दोनों वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में आदित्य बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसने सुनैना का सिर अपनी गोद में रखा हुआ है और लगातार उसके गालों को हाथ से थपथपाते हुए किसी तरह उसे जगाने या होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुनैना की बॉडी से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या क्या हो गया सुनैना को ऐसे अचानक? ओ गॉड, मैंने क्यों ध्यान नहीं रखा? शायद मुझे उसके सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। उसे ज़रूर ये सब सुनकर ही सदमा लगा होगा, इस बारे में ही सोच रही होगी वो। हाँ हाँ, किसी को भी अगर अपने बारे में ये सारी बातें पता चले, ये अजीब सी बीमारी और मेंटल कंडीशन, तो शायद सोच सोच कर उसका भी यही हाल होगा। सब मेरी हालती है। आदित्य फिर से खुद को ही ब्लेम करने लगा, क्योंकि ये उसकी पुरानी आदत है। उसकी लाइफ में या उसके आसपास किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसे लगता है उन सब की वजह वही है, और अगर उसने वैसा ना किया होता तो शायद कुछ भी गलत ना होता। इन्हीं सब गलत के बीच आदित्य ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, और वहां पर कार हॉस्पिटल गेट के सामने रुकते ही आदित्य तुरंत सुनैना को गोद में लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा। उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं देखा कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखकर क्या बात कर रहे हैं। उन सबको इग्नोर करते हुए वो तुरंत ही अंदर आया और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगा। आदित्य को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर सारे लोगों ने उसकी तरफ देखा, और फिर उसकी गोद में सुनैना को, जिस पर एक खरोंच के निशान भी नहीं दिख रहे थे, तो सभी को बहुत हैरानी हुई कि ये आदमी इस तरह से क्यों पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है। तभी एक नर्स ने आगे आते हुए आदित्य को समझाया, मिस्टर आप प्लीज़ थोड़ी शांति बनाए रखिए, क्या हुआ है पेशेंट को आप कुछ बताएंगे, और इस तरह से चिल्लाना बंद करिए, ये हॉस्पिटल है, आपके अलावा और भी लोग हैं यहाँ पर, पेशेंट भी हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। उस नर्स की बात सुनकर भी आदित्य बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ, और उसने उसी तरह से परेशान होते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, डॉक्टर कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर यहाँ पर है भी या नहीं? देखिए मेरी वाइफ को क्या हो गया है, वो होश में नहीं आ रही है, और आप मुझे बोलने से भी मना कर रही हैं, मैं अगर बोलूँगा नहीं तो मेरी बात कौन सुनेगा? आदित्य की बात सुनकर नर्स समझ गई कि उसके भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही वार्ड बॉय को स्ट्रेचर वहाँ पर लेकर आने के लिए बोला। सुनैना को दबाया और उसे लेकर एक साइड चले गए। आदित्य भी भागता हुआ उन सबके पीछे गया। उसने स्ट्रेचर पर लेटी हुई सुनैना का हाथ अभी भी कसकर अपने हाथों में पकड़ा, उसके साथ चलते हुए उसकी तरफ को ही देख रहा है। दूसरी तरफ रागिनी अक्षत के साथ ही वहाँ हॉस्पिटल से वापस आ रही है, और पूरे रास्ते में बोल बोलकर उसने अक्षत का दिमाग खराब किया है। अक्षत लगातार उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मान रही। तभी अक्षत ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या है तुम्हारा, समझ नहीं आता क्या, क्यों इतना बोल रही हो, मुझे ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करने दोगी या चाहती हो हमारा एक्सीडेंट हो जाए? गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए अक्षत ने आखिर ये सब बोल दिया तो रागिनी एकदम ही चुप होकर उसका मुंह देखने लगी। तो उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए पाकर अक्षत और भी ज्यादा इरिटेट हो गया, और उसने कहा, क्या है अब ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो, समझ नहीं आता है या फिर सुनाई नहीं देता है, तुम्हें सिर्फ बकबक करना ही आता है। अक्षत के दोबारा से इस तरह से डांटने पर उसने रागिनी ने एकदम मासूम भोला सा चेहरा बनाने की कोशिश की, और उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई हुई बोली, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि तुमने उसे उस आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया, उसने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, वैसे ये वही आदमी था ना जो उस दिन वो होटल में भी तुम्हें कितना कुछ सुना कर गया था, तो मुझसे कुछ भी बोलते क्यों नहीं हो, आखिर कौन है वो? फिर से उसके वही सवाल सुनकर अक्षत ने अपनी आईज रोल की और बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए वापस सामने की तरफ ही देखने लगा। उसने फिर से रागिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर से रागिनी ने पूछा, बताओ ना कुछ तो बताओ कम से कम, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तब तो मैं ऐसे ही सवाल पूछती रहूंगी ना, आखिर मुझे भी तो जवाब चाहिए, है कौन वो? रागिनी की ये बात सुनकर अक्षत ने एकदम से कार के ब्रेक्स लगाए और कार वहीं पर रास्ते में रोक दिया, और फिर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने अपनी आग बंद करके दोबारा से खोली और थोड़े गुस्से में रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, कोई भी हो वो तुम्हें क्या करना, और क्यों इतनी देर से मेरा दिमाग खा रही हो, और मुझे नहीं फर्क पड़ता वो मुझे कुछ भी बोले तो तुम्हें क्या, वैसे भी उसने मुझे बोला है तुम्हें नहीं, तो तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अक्षत ने जैसे तैसे खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए ये बात बोली, लेकिन रागिनी वो कहाँ मानने वाली थी। आखिर अक्षत ने उसकी बात का जवाब दे दिया तो उसे बोलने की थोड़ी और सह मिल गई। उसने आगे कहा, अरे नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी बोला। तुम्हें पता है अक्षत, उसने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बताओ क्या मेरी वजह से क्या हो रहा है, मैंने आखिर क्या किया ऐसा? एकदम ही अनजान और भोला बनने की कोशिश करते हुए रागिनी ने ये सवाल किया तो अक्षत बोला, नहीं कुछ नहीं, उसे शायद कोई गलतफहमी होगी। अक्षत नहीं चाहता कि रागिनी को आदित्य या सुनैना किसी के भी बारे में पता चले। वो उन दोनों को ही इस मामले से दूर रखना चाहता है क्योंकि उसे नहीं पता रागिनी ये सब खेल क्यों खेल रही है, इसमें कितने लोग शामिल हैं और वो कितने खतरनाक हो सकती है। इसलिए वो चाहता है कि सुनैना और आदित्य पहले ही इतनी प्रॉब्लम में है तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई मुसीबत ना आए। इसलिए अक्षत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मेरा एक पुराना फ्रेंड है और मैंने उसे नहीं बताया हमारे बारे में, बस इसीलिए वो मुझसे नाराज है और जब मिलता है तो ऐसा ही बर्ताव करता है, इसीलिए मैंने कहा कि तुम उस पर ध्यान मत दो। अक्षत की ये बात सुनकर रागिनी थोड़ा बहुत कन्विंस होती हुई नजर आई। उसे लगा कि हाँ, अक्षत का वो दोस्त हो सकता है क्योंकि वो भी देखने में काफी हैंडसम रिच लग रहा था। ये बात अपने मन में सोचते हुए रागिनी ने पूछा, वैसे नाम क्या है तुम्हारे फ्रेंड का? उसके और ज्यादा सवाल सुनकर अब अक्षत से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, क्या करना है तुम्हें नाम जानकर, क्यों इतनी सारी चीजों में घुस रही हो, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अक्षत के इस तरह से डांटने पर रागिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभी तक तो अक्षत उससे ठीक तरह से बात कर रहा था, वो ऐसे अचानक अब उस पर चिल्ला देगा। इसलिए उसने कहा, अरे लेकिन नाम बताने में क्या है, वैसे भी तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, ऐसे डांट क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे हमारे बेबी की हेल्थ पर भी असर होगा, तुम उसकी मॉम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। इतना बोलते हुए मुंह बनाकर उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए पेट की तरफ ही देखा।
अक्षत ने एक हाथ अपने सिर पर मारते हुए धीमी आवाज में कहा, कहाँ फंस गया मैं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि रागिनी को सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या बोला, लेकिन वो इतना समझ गई कि उसने कुछ तो बोला है, इसलिए उसने अक्षत से पूछा, क्या कहा तुमने? अक्षत ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात बदलते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा कि क्यों स्ट्रेस ले रही हो तुम, वो वैसे भी मेरा इतना खास दोस्त नहीं है, तुम उसके बारे में मत सोचो, बस अपने और हमारे बारे में सोचो, हम तुम्हारा होने वाला बेबी, इसके अलावा कोई इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए ना हमारी लाइफ में, और वैसे भी तैयार हो जाओ, बहुत जल्द मैं हमारी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ मीडिया में, अक्षत ने जैसे तैसे बात संभालते हुए कहा। अक्षत की ये बात सुनकर रागिनी को बहुत अच्छा लगा और वो एकदम ही खुश हो गए और अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए बोली, हाँ रियली अक्षत, और मैं भी तो यही कहती हूँ, हम तीनों की प्यारी छोटी सी फैमिली होगी जिसमें हम तीनों ही एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार ही सही लेकिन तुमने भी ये बात तो बोली, वैसे ये बताओ कब करोगी ये अनाउंसमेंट फाइनल, क्या सोचा है तुमने? इतना बोलते हुए रागिनी ने अक्षत का एक हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ ही देखने लगी। उसके कंधे पर सर टिकाने के लिए वो वहाँ से कार में बैठे हुए अक्षत की तरफ आगे बढ़ी। वो उसके कंधे पर अपना सर रखना ही वाली थी लेकिन अक्षत ने जब तक कार स्टार्ट कर दी और उसकी तरफ देखते हुए अक्षत में एक ज़बरदस्ती की स्माइल से कहा, क्या कर रही हो रागिनी, ठीक से बैठो, मैं कार स्टार्ट कर रहा हूँ, और इस तरह से इधर उधर आना जाना और ये सब खाना पीना तुम बंद करो, हमारे बेबी पर बिल्कुल अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अक्षत ने जानबूझकर उसे सुनते हुए ये बात बोली क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी बहाने से इतने करीब आए। रागिनी को लगा कि वो उसकी फ़िक्र करते हुए उसे ठीक से बैठने को बोल रहा है, इसलिए वो भी तुरंत अपनी सीट पर ठीक से बैठ गई और अक्षत ने कार स्टार्ट कर दी और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाए। अभी अक्षत के मुंह से इंगेजमेंट वाली बात सुनकर रागिनी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सातवें आसमान पर है, वो दूर से देखने में ही इतनी ज़्यादा खुश लग रही है। इसके अलावा उसके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं जिनके जवाब को चाहती है, लेकिन उसे पता कि वो अक्षत से ऐसे सीधे ही पूछेगी तो अक्षत उसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाला, इसीलिए उसने थोड़ा सब्र से काम लिया और जानबूझकर अक्षत से इस बारे में नहीं पूछा। लेकिन उसके मुंह से इंगेजमेंट अनाउंस करने वाली बात सुनकर रागिनी ने कहा, थैंक यू सो मच अक्षत, मुझे नहीं पता था कि तुम भी हमारी इंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो और मैं ऐसे ही इतने दिनों से तुम पर शक कर रही थी, जबकि तुम तो मेरे और हमारे बेबी के बारे में कितना सोचते हो ना, थैंक यू सो मच बेबी, ये बेबी भी तुम्हें थैंक यू बोल रहा है पापा। रागिनी की ऐसी बातें अक्षत को बहुत ही इरिटेटिंग लग रही हैं, लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। क्रमशः